अच्छा आगे फिर खमर और इसकी बात आ रही है मैसर की और कुछ और हराम चीजों की। एक बात इससे पहले आपको बता दूं कि खमर का हुक्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं और सूरत निसा में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन सूरह बकरा में जो हमने पहला हुक्म पढ़ा था ना, यसअलूनक अनिल खमरी वल मैसिर, उसमें भी शराब और जुए के बारे में बात आई थी। तो वहां पे हराम नहीं की गई थी ये चीजें, बल्कि कहा गया था कि इसमें बड़ा गुनाह है, लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। अगर आप वो आयत दोबारा देख सकते हो, 219 आयत है सूरह बकरा की। अच्छा उसके बाद फिर दूसरा हुक्म आया जो सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं, या अय्युहल लदीना आमनू ला तक़रबू सलाता वअन्तुम सुकारा, ईमान वालों तुम नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो उसमें ज्यादा सख्त हुक्म आ गया, नमाज जाहिर है दिन में 5 दफा पढ़नी है, 5 दफा तो नशे में नहीं हो सकते ना, 5 टाइम्स में आप नशा नहीं कर सकते। तो फिर जाहिर है फिर इसके अलावा कोई आवर्स ढूंढने पड़ेंगे कि जिसमें शराब पी जा सके। तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी, लेकिन अभी भी कुछ ने जारी रखी। तो यहाँ पे एक बिल्कुल साफ वाजे हुक्म आ गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी ये पीछे इसके डिटेल थी। या यो लदीना मनु इन्नमल खमरु, बेशक शराब, और वल मैसिरु, और जुआ। अब हमने आयत 3 में भी कुछ अहकाम पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ चीजों को हमें बताया गया कि वो हराम है। जुआ भी उनमें से एक है। जुआ कौन सी कमाई होती है, जुआ कैसे खेला जाता है, आज तो खैर इतने तरह के जुए आ गए हैं, ये किसी चीज के ऊपर शर्तें लगाना और उसके बाद उससे पैसा हासिल करना जब शर्त जीत जाते हैं, इसी तरह और भी कई तरीके हैं जुए के। अब इसके ऊपर बात करते हैं, पहले अंसाब को देख लेते हैं। अंसाब वो है नसब से, मैंने आपको बताया आसानी, जहां पे कोई अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कोई जगह मशहूर हो जहां पे जाके इबादत की जाए। इबादत में ये भी है, सजदे किए जा रहे हैं उनको, नजरे नियाजें उनके नाम की चढ़ाई जा रही हैं, और उन्हीं में फिर गैर अल्लाह के नाम पे यानी उनके नाम पे, या इवन अगर अल्लाह के नाम पे भी हैं तो उन आस्थानों पे जाके कुर्बानियां की जाती हैं। तो ये सारे अमल हराम है, और इसी को नुसुबी ये कह के आयत 3 के अंदर हराम कहा गया। यहाँ पे तो सिर्फ अनसाब आया ना, वहां पे इसको बिल्कुल कह दिया गया कि जो जिबा किया जाता है इन इन जगहों पर जाके वो सब हराम है। इन जगहों पर कोई भी ऐसा इबादत का काम करना वो हराम है। तो ऐसी चीज नसब होने का जरूरी मतलब नहीं है कि कोई चीज वहां पे गाड़ के ही आपको बताया जाए कि लोग दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई आपको झंडा ही लगाया जाए या कोई बोर्ड लगाया हुआ है तो फिर उससे पता चल रहा है, नहीं। जहां पे भी लोग जमा होते हैं और ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो वो चीजें सारी अंसाब में आ जाती हैं। वल अजलाम, और अजलाम, अजलाम वैसे तीर को कहते हैं, तो जलम की जमा है ये, जई लाम मीम, ठीक है। अब तीर से क्या करते थे वो लोग, दो काम करते थे, वो दोनों ही नाजायज हैं। नंबर 1 वो ये काम करते थे कि तीरों के जरिए वो यानी कुछ माल तकसीम करते थे, जैसे आप जिसको कह सकते हैं टॉस करना, ये सोच आप कह सकते हैं कि टॉस करके उन्होंने कुछ माल का मतलब वो फैसला किया कि किसको कितना मिलना चाहिए। वो क्या करते थे कि ऐसी मजलिसें मुनक्किद करते थे जिसमें एक ऊंट ले लिया और उस ऊंट के मसलन 10 हिस्से करते थे, और 10 हिस्से करके तीर लेते थे, और तीरों के ऊपर किसी तीर पे लिख दिया 3 हिस्से, किसी पे लिख दिया 4 हिस्से, किसी पे लिख दिया 1 हिस्सा, और किसी पे कुछ भी नहीं लिखा। फिर उनको जैसे आप एक जगह पे सारी चीजें रखते हैं ना, और उनको ऐसे आगे पीछे मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनमें से एक तीर निकालते थे और उस पे जो लिखा होता था, जिसका भी लिखा होता था वो उसको उतना हिस्सा मिल जाता था। मतलब है एक का तीर निकाला और उसके ऊपर लिखा हुआ है 4, तो इस आदमी को 4 हिस्से उस गोश के मिल गए। दूसरे पे लिखा हुआ है 2, तो उसको 2 मिल गए। दूसरे पे लिखा हुआ है एक, तो उसको एक मिल गया, तो किसी का निकला उसके अंदर से तो कुछ भी नहीं उसके ऊपर लिखा हुआ। एक एक हर एक शरीक के लिए एक एक निकालते थे ना, तो 10 लोग हैं, अब उनके 10 हिस्से हैं यहाँ पे किए हुए, तो मिसाल के तौर पे वो 10 लोग हैं, अब 3 को तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उनके 3 तीरों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आज लॉटरी है, आप पर्चियां डालते हैं और मिसाल के तौर पे पर्चियों के ऊपर किसी पे कुछ लिखा, किसी पे कुछ, कोई खाली है, आपने कहा आप तुम्हारी पर्ची निकालते हैं, उनसे निकाली, उसमें कुछ नहीं था, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी है तुम्हें 10,000 मिलेगा, तुम्हारी है तुम्हें 20 मिलेगा, तुम्हारी है तुम्हें 2 रुपए मिलेगी, इस तरह से ना। तो ये जो किस्म है ये भी इस्लाम के अंदर नाजायज है, ये भी एक तरह का जुआ ही समझ लें, किसी को तो इतना मिल गया कोई खाली हाथ रह गया। दूसरा वो क्या काम करते थे पीरों के साथ, वो इससे किस्मत के हाल मालूम करते थे, जो उनका एक बुत के सामने जो मुजावर होता था वो तीर निकालता था, आज आपकी किस्मत का ये हाल है, आज जैसे बिल्कुल आज वो तोते से निकाल लेते हैं फाल, या वो कार्ड से निकाल रहे हैं, टैरो कार्ड के पता नहीं क्या कहते हैं उससे निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें इनको कहा गया रिच्स हैं, ये गंदगी है। कितने लोग इसको गंदगी समझते हैं, कितने लोग इसको समझते हैं कि हम अगर किसी के पास जाते हैं और हम ये अपनी फालें किस्मत के हाल, क्योंकि औरतों को इतना शौक होता है ना इसका, बस पता नहीं फ्यूचर किसी तरह पता चल जाए, जैसे फ्यूचर पता चलते ही इन्होंने कुछ कर लेना, भाई आपका कोई बस ही नहीं फ्यूचर पे, और कोई फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम पागल बन जाते हैं जब कोई लोग कहते हैं नहीं इतना बड़ा सही बताता है, उसने इतना सही बताया, उसने मुझे ये बताया था, वो बिल्कुल वैसे ही हो गया। आपको पता है कि ऐसे इंसान की 40 दिन की नमाज भी कबूल नहीं होती, जो कि ऐसी जगह पे जाता है और जो ऐसी बातों के ऊपर यकीन करता है, और एक हदीस में है कि उसने उसका इनकार किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी इस दीने इस्लाम का इनकार कर दिया उसने, जिसने किसी काहिन के पास गया और उसकी बातों को मतलब माना कि ये बात सही है, इस ये जो उसने कहा है ये ऐसे ही है और ऐसे ही फिर हो गया, और उसकी बात का यकीन कर लिया ना, तस्दीक कर ली उसकी बात की, तो उसके लिए इतना बड़ा गुनाह है, उसने दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। लेकिन आप देखिए ऐसी दुकानों के ऊपर सबसे ज्यादा रश औरतों का लगा होता है, जिनके यहाँ पे किताब के अंदर क्या लिखा, और हमारे मुल्कों में कोई कमी तो नहीं है इसकी, इतनी अगर आज तीरों से नहीं वो किए जाते, अगर चलो अब हम मॉडर्न हो गए हैं, हम कार्ड्स रख लेते हैं, हम तोते रख लेते हैं, हम और कई चीजें निकालने में वो रख लेते हैं, जहां जाते हैं वहां पे एक पंजा बना होता है, तो हाथों की लकीरों से हम बता देंगे आपको आपका फ्यूचर, आपका हाल, मुस्तकबिल सब बता देंगे, इनके पास जाना भी गुनाह है, ये ना कहेंगे हम बाद में नहीं, हम नहीं नहीं हम तो वैसे ही जाते हैं जस्ट फॉर फन, नहीं वैसे ही मैं हाथ दिखाती हूँ जस्ट फॉर फन मजे के लिए, भाई मैं कोई मानने के लिए थोड़ी, नहीं ये बात झूठ है कि हम मानने के लिए, वो अगर आपको कहते कल तुमने मर जाना है उसी पर डिप्रेशन में चले जाना, ऐसा नहीं कि हम मानते नहीं, बिल्कुल मानते, ये फन नहीं रह जाता, इतना बड़ा सख्त गुनाह है जिसको कहा गया रिस है, गुनाह भी नहीं रिस, गंदगी पलीती फिल्थ है ये रिस, वो चीज है जिससे इंसान की तबीयत कराहत करे, ना पाकी है उसके अंदर हार डालते हैं, और मेरा अमल शैतान है, शैतान के कामों में से है। आप एक एक करके इनको देखते हैं, सबसे पहले तो आप शराब पे आ गए, शराब जिसको कहा गया कि ये उम्मुल खबाइस है, खबासतों की माँ, सारी खबासतें इससे फूटती हैं आगे, ये इतनी बुरी चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने माजा की हदीस है कि शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों को पूजने वाला, जैसे लात और उज्जा की परस्तिश करने वाला, ऐसा है शराब पीने वाला, इतनी इसकी कबाहत है कि शराब पीना तो छोड़ें, पीने की तो बाद की बात है, इवन यहां तक के जो इसको इसको बनाने वाला है, जो बनवाने वाला है, जो पिलाने वाला है, जो उठा के ट्रांसपोर्ट करने वाला है, और जो उठवाने वाला है, मतलब एक ट्रक वाले को हायर किया तुम ये शराब लेके यहां से यहां चले जाओ, अब ये उठा तो नहीं रहा ना पी रहा है, और वो ट्रक वाला भी पी तो नहीं रहा, वो तो उठा के ही लेके जा रहा है ना। लेकिन उठवाने वाला भी, उठाने वाला भी, बेचने वाला, खरीदने वाला, कीमत लेने वाला, सब पे अल्लाह की फिटकार है। हदीस में आई, सब पे अल्लाह की फिटकार है। आज जो फिटकार में आ जाए तो उनका क्या हाल होगा? जिन पे फिटकार पड़ जाए तो फिर रहमत कहाँ गई? रहमत मांगे और उसके बाद काम अगर ये करें तो ऐसे स्टॉक्स में या ऐसी जगहों पे काम करना जहां पे शराब बेची जाए और उसको बेचना या खरीदना या उसको तोहफे में देना, ये सभी हराम है। आप देखें कि जिस वक्त शराब की हुरमत हुई तो ये चीज ना इन लोगों के अंदर इस कदर कॉमन थी अरबों के अंदर कि ये तो उनके लिए मतलब, जैसे आज आप देखें एक वेस्ट में कि ड्रिंक है जो कि इनकी कोई पार्टी कोई चीज इसके बगैर पूरी नहीं होती, शराब के बगैर कोई खुशी इनकी पूरी नहीं होती, इसी तरह अरबों में था। लेकिन जिस वक्त ये हराम हुई तो उस वक्त की आप उस वक्त के वाकयात उठा के अगर देखें, एक हदीस में आता है मुस्नद अहमद में है कि हजरत किसान रजी अल्लाह तआला अन्हु शराब के ताजिर थे। जिस साल शराब हराम हुई उसी साल ये शाम के मुल्क से बहुत सारी शराब तिजारत के लिए लेकर आए थे। आप सोचिए इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया, आप तो हराम हो गई, पूछा आप मैं इसको बेच दूं? आपने फरमाया ये भी हराम है और उसकी कीमत भी हराम है। तो उन्होंने सारी शराब बहा दी। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजरत अबू उबैदा बिन जरा, हजरत उबई बिन काब, हजरत सा और सहाबा कराम की एक बड़ी जमात को शराब पिला रहा था। दौर चल रहा था, सब लजत अंदोज हो रहे थे, करीब था कि नशे का पारा बढ़ जाए। इतने में किसी सहाबी ने आके खबर दी, क्या तुम्हें पता है शराब तो हराम हो गई है? उन्होंने कहा बस करो अनस, जो बाकी बची है उसको बहा दो, अल्लाह की कसम इसके बाद एक कतरा भी उनमें से किसी के हलक में नहीं गया। इताअत का, आप फरमा बरदारी का आप एक बेहतरीन नमूना अगर देखना चाहते हैं तो ये है कि इंसान का तो सारी जिंदगी के लिए आप हराम हो जानी, हाय जल्दी से पी लो, आज तो जितनी पी लो बस पी लो, अब तो कभी मिलनी ही नहीं है। ये चीज का पता होना कि कल से नहीं करना, आज कर लो बस, कल तौबा कर लेंगे बस, उसके बाद बस खत्म। और अब तो हराम हो ही गई है, अभी पी लो जितनी पीनी है। ये नहीं उन्होंने कहा, वो भी कौन सा कोई देख रहा है? आप तो वहां पे नहीं थे, तो अभी तो पी लें, बाद की बातें हैं, जब हराम है तो बाद जब जाएंगे सुनेंगे आया तो फिर कर भी लेंगे। नहीं, अल्लाह अकबर। बुखारी और मुस्लिम में भी है कि ये मजलिस जो थी अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पे थी, तो जो पुकारने वाला था ना, मुनादी करने वाला, उसको तो कौन सा कोई और होता था, एक आवाज देता था बंदा, ऊंची आवाज में ऐलान करता फिरता था। तो मुनादी की आवाज पड़ी तो मुझसे कहा जाओ बाहर जाके देखो क्या कह रहा है। तो मैंने बाहर जाके सुना, वो कह रहा था कि शराब तुम पे हराम कर दी गई है। मैंने आके खबर दी तो हजरत अबू तलहा ने फरमाया उठो जितनी शराब है सारी बहा। मैंने बहा दी, मैंने देखा मदीने की गली कूचों में शराब बह रही थी। अल्लाह हू अकबर, कौन इसकी वजह से अपने ऊपर लानत ले सकता है? आप सोचें ये जो मैंने आपको बात बताई फिटकार की, ये 10 10 अफराद हैं जिनको ऊपर फिटकार है, जिनके पर लानत है। तो पीने वाला तो उसके बराबर ही है, पिलाने वाला उसके बराबर ही, बेचने वाला और खरीदने वाला और नचोड़ने वाला और उसको बनाने वाला और उसको उठाने वाला और जिस पे जिसके पास उठा के लाई जाए और उसकी कीमत खाने वाला, ये सारे जो 10 है ना, ये सब बराबर हैं लानत में, इन 10 लानतों के मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ फरमाए। आज मुसलमानों के अंदर पूछते हैं शराब कहाँ लिखा हुआ है कि हराम है, हराम। तो जो लिखा हुआ है रिज्स मिन अमल शैतान, रिज्स है गंदगी है, शैतान के अमाल में से है। शैतान के अमाल हलाल होते हैं? हाँ, शैतान के जो अमल हैं वो हराम होते हैं या हलाल होते हैं? चाहे इसी तरह मुस्लिम वगैरह में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दोस्त कबीला था, कबीला सकीफ, उसमें से या कबीला दौस में से फतह मक्का वाले दिन वो आपसे मिला और एक मश्क तो जो थी पूरा लेदर बैग शराब का वो आपको तोहफतन देने लगा। आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इसे हराम कर दिया? अब उस शख्स ने अपने गुलाम से कहा, जा उसके बेच दे। आपने फरमाया, क्या कहा? उसने जवाब दिया, बेचने को कह रहा हूं। आपने फरमाया, जिस अल्लाह ने इसका पीना हराम कर दिया ना, उसने उसका बेचना भी हराम किया। और कितने आराम से मुसलमान बेच रहे होते हैं, कहते हैं नहीं तो हम पीते तो नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह बहकी की हदीस में कि एक आदमी शराब बेचते थे और बहुत खैरात भी किया करते थे, तो हजरत इब्ने अब्बास से शराब फरोशी का मसला पूछा गया, तो आपने फरमाया ये हराम है और उसकी कीमत भी हराम है। ऐ उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारी किताब के बाद कोई किताब उतरने वाली होती और अगर तुम्हारे नबी के बाद कोई नबी और आने वाला होता, जिस तरह अगलों की रुसवाइयां और बुराइयां तुम्हारी किताब में उतरी हैं, तुम्हारी खराबियां उन पर नाजिल होती, लेकिन तुम्हारे जो काम है इनका मामला कयामत के दिन तक डिले कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, और ये बहुत भारी और बड़ा है। यानी अब जो लोग आज ये काम करते हैं, उसको बेच रहे हैं, फिर उसको बोल कहते हैं हम तो इतना खैरात भी तो करते हैं, इतना डोनेशन भी देते हैं, तो कितनी उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे जो ये गलत कारियां हैं ना, जैसे उनकी तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे कुरान के अंदर है ना बनी इसराइल की बातें, इसी तरह तुम्हारी होनी थी उनकी किताबों में, अगर कोई और उम्मत आने वाली होती, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारा मामला कयामत के लिए उठा के रख दिया। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह एक शख्स खैबर से शराब लाके मदीने में फरोख्त किया करता था। एक दिन वो ला रहा था, एक सहाबी रास्ते में मिल गए, फरमाया शराब तो हराम हो गई है। वो वापस मुड़ गया, एक टीले पे जाके उसने एक कपड़े से उसको ढांप दिया शराब को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा ये सच है कि शराब हराम हो गई? आपने फरमाया हाँ सच है। कहा फिर मुझे इजाजत दीजिए कि जिससे लिए मैं उसको वापस कर दूं। फरमाया इसका लौटाना भी जायज नहीं, यानी मैं वापस करके अपने पैसे ले लेता हूँ। कहा फिर इजाजत दे मैं उसको किसी को तोहफा दे देता हूँ। ऐसे कोई कहते हैं कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया कोई हॉलीडेज पे कोई, जाहिर है आप जब गैर मुस्लिमों अंदर रहते हैं तो कभी किसी ने दे दिया, उसी वक्त कबूल कर लिया, मैं सोचा मैं आगे किसी को दे दूंगी, नहीं। तो उसने कहा कि मैं उसे ऐसे शख्स को तोहफा दे दूं जो उसका मुआवजा मुझे दे। आपने फरमाया ये भी सही नहीं। उसने कहा इसमें यतीमों का माल लगा हुआ है। आपने फरमाया देखो जब बहरीन का माल आएगा उससे हम तुम्हारे यतीमों की मदद कर देंगे, मगर ये नहीं कि तुम यतीमों का चूंकि माल लगा हुआ तो इसलिए शराब का क्या करें, इसे नफा नहीं हासिल कर सकते। तो इसका नुकसान क्या है आखरत के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि जो इसे हुरमत के बाद पिएगा उसे मैं कयामत के दिन प्यासा रखूंगा, यानी हराम होने के बाद भी जो इसको पी लेगा, और हुरमत के बाद जो इसे छोड़ेगा मैं उसे जन्नत के पाकीजा चश्मे से पिलाऊंगा। अब ये सारी आयतें क्या बता रही है? हराम होने के बाद, हराम होने के बाद, हराम होने के बाद, ये कहते हैं कहां पे हराम है? हदीस भरी पड़ी है हराम की अल्फाज से, अगर हराम के अल्फाज ही देखने, मगर हदीस को कौन पूछे, उसको मानते ही नहीं है। अब सल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने नशे की वजह से एक वक्त की नमाज छोड़ी वो ऐसा है जैसे किसी ने पूरी जमीन की सल्तनत छीन, रूए जमीन की सल्तनत छीन गई हो जैसे किसी से, और जिस शख्स ने चार दफा की नमाज नशे में छोड़ दी अल्लाह ताला उसे तीनतुल खियाल पिलाएगा। पूछा गया वो क्या होता है? फरमाए जहन्नमियों का खून और उनकी पीप और उनका पसीना और उनका पेशाब, पी लो यहाँ पे जितनी पी लो, तो उसके बाद क्या है वहां पे ये पीना पड़ेगा। इसके लिए तैयार है कोई? और एक बात और समझने की है, अबू दाऊद में है कि हर अकल को ढांपने वाली चीज खमर है, सिर्फ शराब खमर नहीं है, हर नशे वाली चीज खमर है और हर नशे वाली चीज हराम है। अब आज जो मसला है ड्रग्स का वो कितना बड़ा मसला बन चुका है, खास तौर पे यूथ में, स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये चीज इतनी आम हो चुकी है, और इसकी यानी कबाहत ना उन बच्चों को पता होती है, गैर मुस्लिम बच्चों के, मुसलमान बच्चों को नहीं पता कि क्या चीज हम, ये कितना हराम काम है। आप देखें हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर लोग सिरिंजें पकड़े बैठे हुए, अफीम चर्स फलाम पता नहीं क्या क्या, और ये हीरोइन के टीके लग रहे हैं और क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हराम में आती हैं। जो शख्स नशे वाली चीज पिएगा उसकी 40 दिन की नमाज भी कबूल नहीं है, अगर पढ़ भी ले तो। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए और उन चीजों से महफूज रखे। और ये भी है कि 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा शराब का आदी, और तीसरा अल्लाह ताला के रास्ते में दे के एहसान जिताने वाला। इन 3 की तरफ अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखेगा, और उस दिन अल्लाह की रहमत के बगैर कोई बचेगा कैसे बताएं? उस दिन तो अल्लाह की रहमत से ही कोई जन्नत में भी दाखिल होगा, और अल्लाह की रहमत के बगैर तो कोई बचेगा भी नहीं। तो जिससे अल्लाह की रहमत ही लूट जाए फिर उसका अंजाम क्या होगा? मरफू हदीस में है बुखारी और मुस्लिम में कि जानी जिना के वक्त, चोर चोरी के वक्त, और शराबी शराबखोरी के वक्त उसका ईमान नहीं रहता। यानी अगर उसी हालत में मर गया ना तो ईमान के बगैर मरेगा। उस वक्त जिस वक्त वो ये काम कर रहा होता है उसका ईमान उससे निकल जाता है। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत में कि जो शख्स शराब पिएगा 40 दिन तक अल्लाह तला की नाराजगी उस पर रहती है, अगर वो इसी हालत में मर गया तो काफिर मरेगा, हाँ अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। इतनी अहदीस के बाद भी कोई इंसान में पूछे कि मैं मुझे बताओ कहाँ हराम का लफ्ज लिखा हुआ है, तो फिर मैं, ये मेरे से किसी ने डायरेक्ट पूछा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हराम देखें कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको क्या कहोगे? फजतनीबू, पस बचो उससे, लअल्लकुम तुफ्लहून, ताकि तुम फला पाओ। अगर यानी इनसे नहीं बचे तो तुम फला नहीं पा सकते ये सारी चीजों से। और पीछे क्या आया? अंसाब की बात आई ना, अजलाम की बात आई आयत नंबर 3 में, और वो आयत शुरू कैसे हुई? हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई तुम्हारे ऊपर, आयत 3 में। अब आयत 3 में या इन चीजों को हराम कहा गया, और यहाँ पे इन चीजों के साथ शराब और जुए को लाया गया, तो शराब और जुआ हलाल है और बाकी ये 2 चीजें हराम है, एक ही साथ रख, एक ही लाइन में कह दी गई। खुद सोचे ना, दो हराम चीजों को जब इन इन 2 चीजों के साथ लाया गया है तो ये भी क्या है? ये भी हराम ही है ना, लफ्ज क्यों नहीं आया? बस इनको ये एतराज है, और ये सारी अहादीस छोड़ दी, और अल्लाह ताला ने जिस तरह बतदरीज इसको हराम किया इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए छोड़ना मुश्किल था। 1 मिनट में कह दिया जाता आज सुबह छोड़ दो तो वो मुश्किल था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मुख्तलिफ औकात में अहकाम दिए गए, और अब फाइनल हुक्म दे दिया कि बस। मैंने आपको बताया था ना सूरह मायदा में फाइनल अहकाम आ गए, इसके बाद कोई इसमें से आयत ना मनसूख है ना कोई चेंज है हुक्म, सब एज इट इज है। तो एक ये खमर और दूसरा मुईसर, जुआ इस कदर आम हो गया कि कोई गेम ऐसी नहीं होती, आप क्रिकेट की उठा लें, आप और उठा लें, सब पे जुए चल रहे होते हैं, बाकायदा बुकीज बैठे होते हैं जो जिस टीमों पे शर्तें लगाते हैं, प्लेयर्स को पैसे दे के उनको अपनी तरफ कर देते हैं, और वो फिर हार जाते हैं, और वो हार जाते हैं और फिर उनके पास इनकी जेबों में पैसा चला जाता है। आप देखें ये कितना आम है आज, आपको कोई गेम समझ ही नहीं आती, पता नहीं ये जेन्युइन भी है कि नहीं, इतना जुआ चल रहा है। और ये उन मुल्कों में या उन लोगों के अंदर जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि ये रिज्स है, पलीती के अंदर अपने हाथ नापाक कर रहे हो, उसमें डाल रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया ये अमल शैतान है। और इसी तरह कैसीनोस में जाने में लोग, कोई उनको शर्म हया नहीं, अब तो खैर अब तो ये हाल हो गए कैसीनो भी ऑनलाइन हो गए, वो भी कहते हैं कि कोविड की वजह से आपको जाने की अब जरूरत नहीं है, और उसकी ये ना हो कि कैसीनो बंद हो जाए ना, उनकी तो ऐसे कमाई बंद हो जाएगी, तो उन्होंने ऑनलाइन ही शुरू कर दी, जुए चल रहे हैं उसमें, और उसके बाकायदा इश्तिहार दिए जाते हैं कि अब आप फिक्र ना करें आप महरूम नहीं रहेंगे जुए से। और ये वो चीजें हैं जिनकी लत जिनको लग जाती है ना, एडिक्शन होती है ना, चाहे वो ड्रग्स हैं, शराब, जुआ, ये लत इसको ऐसे ही नहीं कहते, वाकई एडिक्शन है। वो लोग जो जुए के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं वो भी इससे निकल नहीं पाते, वो फिर काम चोर हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते, उनको ये होता है मैं जुआ खेलूंगा इतने पैसे तो बन ही जाएंगे, इतने बना के ले आऊंगा, इतने कर लूंगा। हर जुआ खेलने वाला इस इंटेंशन से नहीं जाता कि चलो कोई बात नहीं मैं हार भी गया तो मेरे पैसे सदका खैरात हो गए, नहीं, वो इससे जाते हैं कि मैंने आज जीतना ही जीतना है, और फिर इसी चक्कर में कुछ दफा तो शुरू के अंदर जीत जाते हैं, और हौसला मिल जाता है। फिर अमर शैतान है ना, शैतान कैसे ही अपने अंदर खींचता है, कुछ दफा तो जीत जाता है तो वो खुश हो जाता है, अब मैं पता नहीं कितना जीतूंगा, अब फिर वो और लगाता है और लगाता है, फिर एक दिन अपना घर बार सब कुछ ही दांव पे लगा देता है। बाद लोग कहते हैं नहीं हम एडिक्शन के तौर पे नहीं कर रहे, हम जस्ट गेम के तौर पे खेल रहे हैं, जस्ट फॉर फन खेल रहे हैं, और हम तो बस $2-4 का खेल रहे हैं, और हम तो ये पैसे अगर हम जीत भी गए तो ये गुरबा मसाकीन के अंदर हम डोनेट कर देंगे। नहीं, जो चीज हराम है उसका सदका भी कबूल नहीं है, हराम में आप पढ़ के आपने अपने पर कितना बड़ा गुनाह ले लिया, ये फन नहीं है, ये एक दिन आदत बन जाती है फिर, और फिर इससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, और फिर ये ऐसे आसमान, इसकी बात हम कर चुके हैं आयत नंबर 3 पे, किस तरह ऐसी जगहों पे ऐसे आस्थानों पे लोग जाते हैं, वहां पे चादरें भी चढ़ा रहे हैं, वहां पे जानवर भी जिबा रहे हैं, वहां पे देगे भी खिला रहे हैं लोगों को, ये क्यों किसी और के नाम, गैर अल्लाह के नाम से मशहूर है ना वो जगह, वहां भी जाके चढ़ावे क्यों चढ़ाने, वहां भी जाके भूखे मिस्कीन और दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वो जगह जो किसी और के नाम से मशहूर है और वहां पे ये इबादत के काम किए जा रहे हैं जो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, वहां पे जाके ये खाने खिलाते हैं और वहां पे जाके और शिरकिया काम करते हैं, ये तो जितनी दरगाहें हैं वहां पे क्या चल रहा है आजकल, वो बनती किस लिए है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी जबरदस्त आप देखते हैं मार्बल लगा हुआ है, फर्श कैसे हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और पूरे आपके आराम का इंतजाम किया जाता है, ये एसी वेसी लगे हुए हैं, सब लगे हैं, अब इसीलिए ताकि लोग यहाँ पे आए और ये काम करें, वरना दुआएं तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, और चल रहे हैं ऐसे सारे आसमान, और अजलाम आप देख रहे हैं किस्मत की हालत, जो वो चीज अमल शैतान है वो हम उनके अंदर कितने तेज हैं आज, ये शराब वगैरह का तो कोई मसला ही ना रह गया, इवन मैं सोचती हूँ अल्लाह इनको कोई खौफे खुदा नहीं है, जहाजों के अंदर बैठते हैं वहां पे भी शराब है, और मुसलमानों की एयरलाइंस, मुसलमान मुल्कों की एयरलाइंस में शराब सर्व की जा रही है, तुम्हें यहाँ पे भी नहीं खौफे खुदा, तुम आसमान के अंदर हो, तुम यहाँ पे पियोगे तो किस में मरोगे, और जो सर्व कर रही है वो क्या सर्व कर रही है, वो कह रही हम तो जॉब करती हैं, हम क्या करें, हमारे तो जॉब का हिस्सा है, एक एयरलाइन के ऑफिस फोन किया तो जो वो मशीन चलती है उसमें पहला मैसेज किया था, मैं तो इतनी हैरान हुई कि अगर आपने विस्की परचेज करनी है, अगर आपने ये करना है, या अल्लाह तुम्हें क्या हो गया, तुम लोग की अल्लाह की किताब नहीं पढ़ते, फिर आप देखें शादियों पे सर्व की जाती है, और नाम क्या है, ये जो हम गैर मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम आपके इतने प्यारे हैं कि आप उनके लिए अल्लाह का गजब ले लोगे, आप उनको पिला रहे हो, नहीं हम खुद तो नहीं पी रहे, खुद नहीं पी रहे तो लानत का शिकार तो हो रहे हैं, अल्लाह की फिटकार का शिकार तो हो रहे हैं, उस शादी में क्या खैर रहेगी जो हराम से शुरू हो रही है, क्या खैर होगी, अल्लाह ताला हमें माफ करे, फजतनी बूहू, बस बचो इससे, इज्तनाब करो इससे, रुक जाओ इससे, यानी मत करो इसको, इससे ज्यादा मना करने की और क्या बात की जाए, कहते हैं हराम नहीं है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मत करो इससे, इज्तनाब, इससे बचो, इससे दूर रहो, ऐसे हम कहते हैं ये नहीं कहते कि ये आग है इसके करीब चले जाना लेकिन इसको हाथ ना लगाना, हम कहते हैं इससे दूर रहो, हीटर से बच्चों को दूर रखते हैं, फायरप्लेस से दूर करते हैं कि करीब भी ना कहीं जाए, तो बचो इससे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, इसका मतलब इसके जरिए क्या है, तुम्हारी फलाह खो जाएगी अगर तुम इन चीजों में पड़े तो, तुम इसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, वरना नाकामी है अगर ये रास्ता इख्तियार किया तो।